चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम महाभारत से जो कर्ण के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, तो उसके पहले एक श्लोक है भगवान के गुणगान के बारे में। तो हम कर्ण और अर्जुन के जीवन की थोड़ी तुलना करेंगे आज। तो अर्जुन जो जब भीष्म पितामह विष्णु सहस्रनाम बोलते हैं उसके अंत में वे भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए एक श्लोक बोलते हैं। तो श्लोक मैं पहले अर्थ बताता हूँ फिर आप दोहराइए मेरे पीछे पीछे। कम कर पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमा भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन। पद्मपत्र विशालाक्ष, भगवान जो है उनके आंखें एक कमल के फूल के समान है। पद्मपत्र विशालाक्ष, उनके आंखें बहुत बड़ी हैं। तो ये बड़े आंखों का कहने का मतलब क्या है कि वे हमेशा सब कुछ देख सकते हैं और वे अपने भक्त के कल्याण को हमेशा देख सकते हैं। पद्मनाभ सुरोत्तमा, वो छोटे बालक की बड़े आंखें होती हैं पर उसका संरक्षण करना पड़ता है, वो किसी का संरक्षण नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। पद्मनाभ, उनके नाभि से वो पद्म आया था जिसमें सारा ब्रह्मांड जिससे सारी ब्रह्मांड की निर्मिति हुई थी। सुरोत्तमा, और सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। और उनकी और विशेषता क्या है, ये उनकी शक्ति के बारे में हुआ। पर अगले बता रहे अगले पंक्ति में बता रहे कि वे अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भक्तानाम अनुरक्तानाम, भक्त भगवान से आसक्त होते हैं और जो भगवान होते हैं भक्तों से आसक्त होते हैं, अनुरक्त होते हैं। और वो अनुरक्ति किस प्रकार से प्रकट करते हैं, त्राता भव जनार्दन, इस भौतिक जगत में जो भी संकट आते हैं उनसे तारते हैं वो। तो कृपया दोहराइए पद्मपत्र विशालाक्ष विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमा भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमा भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमा भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन। कोई दोहराना चाहिए?
पद्मपत्र विशालाक्ष
पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन। लिखा नहीं, ऐसे थोड़ा मुश्किल जा रहा है, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो हम महाभारत से 8 प्रसंगों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार, जिसमें हम दो भाव देखते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति में दो प्रमुख भावनाएं होती है, एक है भक्त की शरणागति और सेवा, और दूसरी है भगवान की कृपा। तो दोनों जब साथ में आते हैं तो फिर भक्ति होती है। जैसे भगवान भगवीता में बताते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं वे कि जो मेरा चिंतन करते हैं ऐसे लोगों को, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागरात, इस भाव सागर से कितने समय में, भवामी भविष्य में, कितने समय का, न चिरात पार्थ, चीर मतलब बहुत समय, जैसे हम कहते हैं चिरंजीव भाव, बहुत लंबे समय तक जियो, पर न चिरात मतलब ज्यादा समय नहीं, जल्दी ही मैं तारता हूं। पर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैयावेशित चेतसा, जो मन है हमारा भगवान में लगाना है। तो इस श्लोक को दर्शाते हुए प्रभुपाद जी की भगवीता यथारूप में बहुत सुंदर चित्र है, कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति सागर में डूब रहा है और ऊपर भगवान गरुड़ जी पे आते हैं और फिर अपना हाथ नीचे कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपना हाथ ऊपर कर रहा है। तो जब भगवान हाथ देते हैं तो भगवान का हाथ देना जो है वो उनकी करुणा है, और जो हम हाथ ऊपर करना है भगवान का हाथ लेने के लिए, वह हमारी स्वेच्छा है, वह हमारी शरणागति है, वह हमारी सेवा है। तो हम देखेंगे आज के प्रवचन में कैसे भगवान अर्जुन पे कृपा करते हैं और भगवान कर्ण पे भी कृपा करने का प्रयास करते हैं। पर अर्जुन और कर्ण ये दोनों अलग अलग प्रकार से प्रतिसाद देते हैं भगवान को। तो कर्ण के बारे में हम चर्चा तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साधारणतया जैसे हम कुछ समय पहले राम कथा कर रहे थे, तो राम कथा में बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र बहुत नेक है और रावण जो है वो बहुत ही हिंसक है और दुष्ट है। तो वैसे ही अगर हम महाभारत में देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है बहुत ही नेक है, बहुत ही गुण संपन्न है, और दुर्योधन जो है ये हमेशा कूटीनाटी करने वाला है। पर जो कर्ण है उसमें कुछ सद्गुण है पर कुछ दुर्गुण भी है। और साधारणतः हम जीवन में देखते हैं कि बिल्कुल सफेद और बिल्कुल काला कोई व्यक्ति नहीं होता है, साधारणतः जो होते हैं वो ऐसे सद्गुण और दुर्गुणों के का एक मिलन होता है। तो जो कर्ण है वह महाभारत में से निकलने वाला, महाभारत में दर्शाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसमें है, और उनसे जो भगवान सीख देते हैं उसके बारे में बहुत से लोगों को गलत फहमी है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कर्ण के प्रति अन्याय हुआ और वो अन्याय के खिलाफ हमेशा झगड़ते रहे, पर अंत में अन्याय ने उसके कारण वो हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। पर हम देखेंगे कि कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय हुए और कर्ण ने क्या क्या अन्याय किए, और पांडव उनमें से अर्जुन के क्या साथ भी कुछ अन्याय हुए और अर्जुन ने उसकी प्रतिक्रिया कैसे की। तो अगर हम जन्म देखते हैं तो हम जानते हैं, आप सब ने महाभारत पता है आपको, तो मैं जो कहानियां हैं उनको ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ जो प्रसंग है जो महत्वपूर्ण है हमारे विश्लेषण के लिए उनका थोड़ा वर्णन करूंगा। तो हम जानते हैं कि दुर्वास मुनि जब पृथा जो थी कुंती उनके महल, पिता के महल में आई थी, तब उनके पिता ने कहा पृथा को कि आप दुर्वास मुनि की सेवा करो। तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की दुर्वास मुनि की, और उसके बाद में दुर्वास मुनि प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छा सुपुत्र मिलेगा, देवों द्वारा सुपुत्र मिलेगा। और तभी एक प्रथा जो थी बहुत छोटी बालिका थी और उसका विवाह भी नहीं हुआ था, तो उसने अपने जो बालिका का जो मन था उसके अनुसार ऐसे ही सूरज को देख रही थी और वो मंत्र बोल दिया और तुरंत वहां पे सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव आ गए और वो आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन व्यक्ति आ गए, इतने ज्वलंत व्यक्ति है, ये सूर्यदेव है, तो तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें आके तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें अभी पुत्र दूंगा। तो बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बुलाया था, ऐसे ही तुम देवों को नहीं बुला सकते, अगर तुमने मंत्र बुलाया है तो उद्देश्य था वो तुम्हारा। तो वो डर गए, बोले नहीं 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 मैं तो अभी पुत्र नहीं ले सकती, मैं विवाह नहीं हुआ है वगैरह। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो पवित्रता है उसका नाश नहीं होगा, पर अगर तुमने मुझे बुलाया है तुम्हें पुत्र देना ये मेरा कर्तव्य है। देवी देवता है कैसे होते हैं, अगर उनकी कोई पूजा करता है तो उनको कुछ वर देना ये बाध्य हो जाता है। तो साधारणतया भले ही कभी वो जानते हैं कि ये वर अच्छा नहीं है पर उनको बाध्य हो जाना पड़ता है, क्योंकि क्या है उनका जो संबंध है उनके उपासकों से वो अधिकांश रूप से एक बिजनेस का संबंध, धंधे का संबंध है। जैसे कोई दुकानदार होगा उसको जाकर अगर कोई पैसा देता है और छोटा बालक है, मैं बोलता हूँ चॉकलेट दो, तो वो चॉकलेट दे देगा, पैसे दिए चॉकलेट दे देगा, वो देखेगा नहीं कि ये जो चॉकलेट है ये बच्चे के लिए अच्छा है कि नहीं, उसके दांत पहले ही थोड़ा खिड़ गया है और चॉकलेट खाएगा तो और ख़राब हो जाएगा, वो ये सब देखेगा नहीं। क्योंकि क्या है वो जो रिश्ता है वो सिर्फ एक धंधे का रिश्ता है। तो जो अगर वो अपने माँ के पास जाएगा मैं चॉकलेट चाहिए बोलेगी, तो माँ बोलेगी नहीं चॉकलेट नहीं देगा, तो वो बोले माँ को मैं पैसे देता हूँ, पैसे नहीं चाहिए मुझे तो चॉकलेट नहीं मिलने वाला है। माँ उसको कुछ और अच्छा स्वादिष्ट अंजन दे देगी, चॉकलेट से भी अच्छा है पर उसके दांतों को भी खराब नहीं होगा। तो भगवान जो है वो एक माँ के समान है, कुछ देवी देवता है जो अगर उनको बुलाते हैं उनका मंत्र से उपासना करते हैं तो उनको वर देने में बाध्य हो जाते हैं। तो फिर जो प्रथा थी वो बड़ी भयभीत हो गई कि हमारा कुल बदनाम हो जाएगा, इसीलिए उसने वो बालक को एक लकड़ी के डिब्बे में अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हुए उसको नदी में डाल दिया। और फिर वो बालक को जो आदिरथ था, जो एक सूत पुत्र था, सूत था जो रथ चलाता था, उसको मिल गया वो और वो उसने उसको अपना लिया। और इसके कारण कर्ण का जन्म भले ही एक क्षत्रिय कुल में हुआ था पर फिर भी उसको जीवन भर सूत पुत्र बताया गया। और इसके कारण उसको जो क्षत्रिय का आदर था कई बार नहीं मिला, तो ये जन्म के शुरुआत से ही उसके प्रति एक अन्याय हो गया था। तो वास्तव में इसके पहले पीछे भी एक दूसरी कहानी है, विस्तार में हम नहीं जाएंगे। एक सहस्र कवच नाम का एक असुर था तो पूर्व जन्म में, और वो उसके शरीर पे सहस्र कवच थे और ऐसा शर्त था कि एक समय उसके सारे सहस्र कवच को तोड़ देना चाहिए, अगर तोड़ेंगे तो ही उसकी मृत्यु होगी। और वो बड़ा शक्तिशाली था तो एक समय सहस्र कवच कौन ऐसा प्रतिकार कर, ऐसा आक्रमण करेगा, और वो प्रतिकार नहीं करेगा वो सहस्र कवच असुर कि सारे कवच एक साथ टूट जाएंगे, तो कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो अंत में नर नारायण ऋषि जो थे वो सारे विश्व भर में आतंक कर रहा था, तो तभी क्या हुआ नारायण ऋषि ने क्या किया, एक साथ आक्रमण किया और वो प्रतिकार करने का प्रयास कर रहा था पर ये भगवान के अवतार हैं, तो फिर उसे 999 जो कवच थे टूट गए पर एक बच गया। और फिर वो सोचा था बचूंगा कहाँ, मैं कहाँ भागूंगा, तो वो शक्तिशाली था तो वो भाग भाग के सूर्य के आश्रय में चला गया। सूर्यदेव है ये भी एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि कोई उनको शरण में आता है तो शरण में आए व्यक्ति को ठुकरा नहीं सकते हैं, इसलिए उनको स्वीकार कर लिया। पर सूर्यदेव भी सोच रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को मैं कब तक मेरे साथ रख सकता हूँ, तो इसीलिए जैसे ही प्रथा ने उनको मांगा, उनको याचना की, तो तुरंत उन्होंने इसको अपने पास दे दिया। तो वो जो था पूर्व जन्म से थोड़ी असुरी प्रवृत्ति थी पर क्योंकि भगवान के हाथों से उस पर प्रहार हुआ था तो थोड़ा सा शुद्धिकरण भी हो गया था, पर ज्यादा शुद्धिकरण नहीं हुआ था। तो सूर्यदेव का पुत्र था वो एक तरह से, पर दूसरी तरह से पिछले जन्म में असुर था और असुर के रूप में वो सूर्यदेव का आश्रय ग्रहण किया था। तो एक तरह से जब बचपन में कर्ण के प्रति अन्याय हुआ। अगर हम पांडवों के जीवन को देखते हैं तो हम जानते हैं कैसे बचपन में ही उनके पिता भी गुजर गए, पांडु महाराज गुजर गए, और जब उस समय पांचों पांडव काफी छोटे थे और जब वे हस्तिनापुर में रह रहे थे तभी जो दुर्योधन, दुशासन ये सब लोग उन पे बहुत षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे थे, और यहाँ तक कि भले ही वो राजपुत्र थे फिर भी उनको कभी विशान महाग्ने पुरुषात दर्शनात असत्सभाया वनवास कृच्छ्रता मृदे मृदे अनेक महारथा श्रुतस द्रोण्यस्ततश्चास्म हरे विरक्षिता। विशान तो हम जानते भीम को विष खिलाया गया था दुर्योधन द्वारा उनको मारने के लिए, महाग्नि और फिर उनको ऐसे लक्षाग्रह में रखा गया जहाँ उनको जलाया गया, उसके बाद में उनको भी वन में रहना पड़ा था। तो एक तरह से हम देखेंगे तो पांडव के प्रति भी अन्याय हुआ था, वो भी राजपुत्र थे। तो भले ही वो राजपुत्र थे पर क्या हुआ, वो उनके पिता नहीं रहे और उनके जो चाचा जिनके देखभाल में रहने वाले थे धृतराष्ट्र, वो और उनके पुत्र चचेरे भाई, वो उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको जंगल में रहना पड़ा। तो पांडव रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र एक बार जंगल में जाते हैं, पर जो पांडव है वो दो बार उनको वनवास जाना पड़ता है। सबसे पहले जब लक्षाग्रह जलता है तभी वो वहां से लक्षाग्रह से भागते हुए जाते हैं, तो जंगल में रहते हैं काफी समय, तो जंगल में रहते हैं, और फिर उसके बाद में व्यासदेव उनसे मिलने आते हैं और व्यासदेव कहते हैं कि आप जो द्रौपदी का स्वयंवर है वहां पे जाओ। तो जब द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं वो और वहां पे द्रौपदी का हाथ प्राप्त होता है अर्जुन को, तो उसके बाद में धृतराष्ट्र समझते हैं कि अभी ये पांडव बड़े शक्तिशाली हो गए हैं तो इसीलिए इनको ऐसे ही मैं ठुकरा नहीं सकता। तो फिर उनको वापस बुलाते हैं और उनको आधा राज देते हैं, पर आधा राज भी कैसे राज देते हैं, अब बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर मैं तुमको आधा राज देना चाहता हूँ क्योंकि तुम और दुर्योधन ये दोनों राजवंश में ही आए हैं, तो मैं तुमको खांडव प्रस्थ देता हूँ। खांडव प्रस्थ मतलब क्या, पूरा जंगल था, वहां पे लोग नहीं रह रहे थे, वहां पे कोई संपत्ति नहीं थी, कहीं खेती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मान लीजिए कोई पिता है कि दो पुत्र है, तो पिताजी के दो कंपनी है, एक कंपनी बहुत सा पैसा कमा रहा है और दूसरा कंपनी पूरा डूब रहा है, और फिर वो पिता बोलते मैं तुम दोनों को एक एक कंपनी देता हूँ, और तुमको ये कंपनी ले लो और ये तुम ये डूबने वाली कंपनी ले लो। तो कोई कहे ये अन्याय है, तो वास्तव में पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ, कई बार अन्याय हुआ। तो महाभारत और रामायण इनसे प्रमुख सीख क्या है कि ये जीवन ऐसा है कि सबके साथ कभी ना कभी तो अन्याय होता है। वास्तव में हम अगर तत्वज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सबको वही मिलता है जो उनके पूर्व कर्मों के अनुसार आ रहा है। पर इस जीवन की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि अन्याय हो रहा है। तो जब अन्याय होता है तो उसका प्रतिसाद उसके तब किस तरह से कार्य करना चाहिए, यह इसमें हम बहुत ही दिलचस्प विरोध देखते हैं पांडवों में और कर्ण में, और उससे भी विपरीत दुर्योधन में। तो दोनों के साथ एक तरह से अन्याय हुआ। तो इसके बाद में जब पांडवों में, तो हम अन्याय के बारे में चर्चा करिए, तो दूसरा प्रसंग जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब पांडवों ने अपना सारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया, पांडवों और कौरवों ने, तब जो द्रोणाचार्य थे उनको बताया गया, उन्होंने बताया धृतराष्ट्र महाराज को कि मैंने जो शिष्य है उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षण प्राप्त किया है, तो सारे नागरिकों और मंत्रियों की प्रसन्नता के लिए हम एक एग्जीबिशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और उसमें सारे पांडव और कौरव अपने जो प्रतिभा है वो प्रदर्शित करेंगे। तो सब प्रसन्न हो गए और सारे जो हस्तिनापुर के नागरिक आ गए, सारे पांडव, धृतराष्ट्र और फिर कुंती, गांधारी सब आ गए, और वहां पे जब इस तरह से जब सब प्रदर्शन कर रहे थे तो दुर्योधन बड़ा शक्तिशाली था गधा के शक्ति में, और उसी तरह से भीम भी बड़ा शक्तिशाली था। तो सबने प्रदर्शन जब किया, सब जो नागरिक थे, मंत्री थे, सब आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए। पर सबसे बाद में इनमें अर्जुन आया, और जब अर्जुन आया तो उन्होंने ऐसी निपुणता दिखाई कि बाकी सब की निपुणता बिल्कुल से छोटी रह गई। मान लीजिए कोई किसी का कोई लालटेन लेके आता है, तभी सूरज आ जाता है, तो ऐसे हो गया। और जब इस तरह से सब लोग तालियां बजाने लग गए तो क्या हो गया, तो तालियां बज रही थी और दो लोगों का हृदय टूट रहा था। कौन? धृतराष्ट्र और दुर्योधन। धृतराष्ट्र सोच रहा था कि ऐसे तालियां, ये नागरिक मेरे पुत्र दुर्योधन जब अपना प्रदर्शन कर रहा तब क्यों नहीं बजा रहे थे। दुर्योधन सोच रहा था ये अर्जुन को कैसे निपटूंगा मैं, सब लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। और जब इस तरह से हो रहा था तभी अचानक वो जो प्रदर्शन का आंगन था उसमें किसी के प्रवेश के पद आ रहे ऐसे दिखा, और सबने उठ के देखा तो एक ज्वलंत कोई व्यक्ति आ रहा था। और जब व्यक्ति आ रहा था तो उसने आके थोड़ा सा आधा प्रणाम किया द्रोण को, उसके पास एक बड़ा धनुष था और ऐसे दिख रहा था कि उसके सारे शरीर पे कवच है। तो जो सहस्र कवच का एक कवच बचा था वो कर्ण के पास आ गया था। तो और फिर उसके पास कुंडल भी थे अद्भुत। तो उसने देखा कि क्या मैं मेरे शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूं यहाँ पे। तो फिर तो उसने कहा कि जो भी क्षमता अर्जुन ने दिखाई है वो सब मैं दिखाऊंगा और उससे अच्छा मैं दिखाऊंगा। तो यह सुन के सारे पांडवों को पहले क्रोध आ गया, खास करके अर्जुन को क्रोध आ गया। क्योंकि क्रोध का कारण क्या था, वास्तव में जो प्रसंग क्या था कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की प्रतिभा नागरिक को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ण को आके अपना प्रतीक्षा, अपने क्षमता दिखाना, ये केवल अहंकार का प्रदर्शन है। तो इसीलिए प्रसन्न नहीं थे पांडव, थोड़े क्रोधित हो गए थे। पर द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, और फिर उसने सारी प्रतिभा दिखाई और जो भी कृत्य अर्जुन ने किए थे सब कृत्य उसने दिखे। और जैसे कृत्य कर रहे थे तो क्या हुआ था, जो दुर्योधन का हृदय सारा टूट गया था वो जुड़ गया वापस, प्रसन्न हो गया वो, सोचा कि ये एक व्यक्ति मिल गया मुझे जिसके द्वारा मैं कर्ण अर्जुन का प्रतिकार कर सकता हूं। तो फिर तो जारे साहब प्रदर्शन जब उसने दिखाया कर्ण ने, तो बाद में कर्ण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं सीधा अर्जुन के साथ द्वंद्व करूं। तो जैसे ही अर्जुन ने सुना तुरंत उन्होंने अपना धनुष उठा लिया, तो इस व्यक्ति का अहंकार अभी खत्म कर देंगे, बहुत हो गया। और जब दोनों इस तरह से द्वंद्व करने ही वाले थे, उसके पहले जब भीम ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था और दुर्योधन ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो बाद में उन दोनों में द्वंद्व हो गया था और द्वंद्व भी बहुत भीषण हो गया था। तो तभी अश्वत्थामा और कृपा बीच में आ गए थे, उनको अलग कर दिया था। तो यहाँ पे कृपाचार्य ने यह भी देखा कि यह भी बहुत ही भीषण युद्ध हो सकता, द्वंद्व हो सकता है, तो उन्होंने वो टालने के लिए कहा अगर द्वंद्व करना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि द्वंद्व होता है वो समान व्यक्ति में होता है। तो हम जानते हैं कि अर्जुन कुरु वंश में है, तुम कौन से वंश में हो बताओ। तो जैसे ही कर्ण ने सुना तो कर्ण ने अपने सिर नीचे कर लिया, और जब यह देखा तो दुर्योधन सोचा कि यही मौका है। तो उसने क्या किया, तुरंत आके भाषण देने लग गया। किसके बारे में, धर्म के बारे में भाषण देने लग गया। क्या भाषण देने लगा, वो बोल रहा कि जाति पद्धति वास्तव में जन्म से नहीं होती है, गुणों से होती है, और देखो आप इसके गुण कैसे गुण है। इस प्रकार का धनुर्विद्या में निपुणता क्षत्रिय के अलावा और किसी में नहीं हो सकती है, और अगर क्षत्रिय में जन्म नहीं हुआ है फिर भी मैं मानता हूं कि क्षत्रिय है क्योंकि इसमें क्षमता है ऐसी, और अगर आपको लगता है ये क्षत्रिय नहीं है तो मैं इसको क्षत्रिय बना दूंगा। और उसने क्या किया, मतलब जो अंग प्रदेश है उसका राजा मैं तुम्हें बना देता हूं। तो जब यह सुना कर्ण ने, तो कर्ण वास्तव में बहुत ऋणी हो गया दुर्योधन के प्रति। तो कर्ण सोच रहा था कि कितना अच्छा मित्र है मेरा, मेरा अपमान हो रहा था और मेरे अपमान के समय में मेरा मान बचा लिया। पर वास्तव में दुर्योधन का अपना ही चाल चल रहा था। तो क्या हो गया, कर्ण अपने परिस्थिति के कारण दुर्योधन के स्वार्थ में एक कठपुतली बन गया। और फिर जब इस तरह से उसने प्रदर्शन किया, जब उसने वहीं पे क्या किया, वहां पास के नदी से जल लाया और कर्ण का अभिषेक कर दिया, उसको कहा कि मैं घोषित करता हूं कि अंग प्रदेश का राजा है। और जब इस तरह से जब घोषणा हो गई तो सारे तो जो कुछ नागरिक थे कुछ दुर्योधन का गुणगान करने लग गए और कुछ थोड़े भ्रमित थे क्या हो रहा है। जब इस तरह से जैसे ही राज्याभिषेक हो गया उसका, तभी एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आ गया जो नागरिकों के बीच में से और नीचे आके, और वह आके कर्ण को आलिंगन करने लग गया। और कर्ण ने तुरंत देखा, कर्ण ने प्रणाम किया उन्हें और कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि ये मेरे पिता है। तो सबने देखा कि ये तो ये एक सूत है, तो सूत के पुत्र। सूत मतलब क्या होता है कि वह जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार प्रमुख वर्ण होते हैं, पर कभी कभी दो अलग वर्णों में अगर विवाह हो जाता है तो फिर जो उससे जो अनुलोम या प्रतिलोम जो संतान होता है, तो वैसे उनमें से एक प्रकार का सूत होता है। तो यह देखकर तभी कृपाचार्य ने कहा कि अगर ये क्षत्रिय नहीं है तो युद्ध नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में द्वंद्व नहीं हो सकता है। तो दुर्योधन तभी वापस भाषण देने लग गया, कहने लग गया कि क्षत्रिय के गुण भी है, अभी क्षत्रिय का राजा भी है वो, तो फिर द्वंद्व होना ही चाहिए। तो जब अर्जुन ने देखा ये कि इतना ये इसकी इच्छा है द्वंद्व की, तो अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य को जरूर द्वंद्व हो जाने दो। पर जब ऐसे बात चल रही थी तभी सूर्यास्त हो गया और उस दिन जो प्रदर्शनी थी वो खत्म हो गई। पर इस प्रसंग के द्वारा क्या हो गया, जो कर्ण दुर्योधन से बंध गया, और जो कर्ण के जीवन से प्रधान जो सीख मिलती है हमें, कैसे सद्गुणी व्यक्ति दुर्गुणी व्यक्ति के संग से दूषित हो जाता है। तो वास्तव में कर्ण अनेक सद्गुणों से संपन्न था, कर्ण को दानवीर भी कहते, कोई भी उससे दान मांगने आता था तो वो नहीं नहीं बोलता था। पर उसका जो दुर्योधन से दुस्संग हो गया, उसके कारण जो प्रभाव हो गया, उससे उसके सारे सद्गुण दुर्गुण में बदल गए। सद्गुण तो रहे पर उनका दुरुपयोग हो गया। तो इसके बाद में जो अर्जुन और द्रोण, अर्जुन और कर्ण, इन दोनों की वापस जो द्वंद्व हुआ वो हुआ द्रौपदी के स्वयंवर में। तो इसके बीच क्या हुआ, इसके बीच दुर्योधन ने षड्यंत्र बनाया कि पांडव को जला दे, पर पांडव बच गए। पर कौरव सोच रहे थे कि पांडव जल के मृत्यु हो गए। और जब द्रौपदी के स्वयंवर में जब पहुंचे वो, तो जो पांडव थे वो ब्राह्मण के वेश में थे, क्योंकि वे व्यासदेव जी ने उनको बताया था कि आप ब्राह्मण का वेश स्वीकार करो। तो जब ब्राह्मण के वेश में वहां पर पहुंचे तो सब क्षत्रिय जो थे वो उस स्वयंवर में सहभागी हो रहे थे। तो द्वारका से कृष्ण बलराम और बाकी यदु नरेश भी आए थे, पर कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी वास्तव में अर्जुन की भार्या बनने वाली है। तो इसीलिए किसी भी यादव वंश के राजाओं ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया, वो उपस्थित थे पर उन्हें भाग नहीं लिया। और फिर एक एक राजा आके वो स्वयंवर में जो शर्त लिखी थी कि जो ऊपर एक पंखे जैसे घूमने वाला पहिया है और उसके ऊपर एक मछली है और नीचे प्रतिबिंब में देख के ऊपर तीर मारना है, तो इसमें प्रयास कर रहे थे। तो सब प्रयास कर रहे थे तो कोई भी यशस्वी नहीं हो रहा था। और उस समय दुर्योधन आया और अधिकांश लोगों को तीर छोड़ते हुए वो तीर वो पहिए को भेद भी नहीं पाया। तो दुर्योधन ने जब तीर छोड़ा तो पहिए को भेद गया पर वो मछली को नहीं लगा। तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित होके फेंक दिया उसने नीचे, चला गया वापस। और फिर बाद में कर्ण आ गया, कर्ण ने कहा, कर्ण आ गया स्वयंवर उठाने के लिए। और तभी दुष्टद्युम्न ने कहा, दुष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, उसने कहा कि मेरी जो बहन है वो किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। तो जब कर्ण ने सुना बड़ा क्रोधित हो गया, मुट्ठी बांध लिया और फिर मुड़के चला गया। तो एक तरह से देखेंगे तो ये कर्ण के प्रति अन्याय था, पर उसके बारे में वापस आएंगे। तो उसके बाद में सब जो क्षत्रिय है उन सब का सब ने प्रयास किया और सब अपेशी हो गए। और अभी तभी द्रुपद महाराज जो थे वो बड़े चिंतित हो गए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है तो फिर मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा। तो वास्तव में द्रुपद महाराज जानते थे कि उन्होंने जो शर्त लगाई थी वो शर्त की पूर्ति केवल अर्जुन कर सकते थे, अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि बड़ा ही जटिल लक्ष्य रखा था। और उन्होंने भी सुना था कि ये पांडवों का वध हो गया है लक्षाग्रह में, पर उनको ऐसी आशा थी कि शायद उनकी जल के मृत्यु नहीं हो गया। और सोच रहे थे अगर मृत्यु नहीं हुई होगी तो वे जरूर आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो इसी बीच जब ये सब राजा स्वयंवर में आके प्रयास कर रहे थे तब कृष्ण और बलराम जी देख रहे थे कौन कौन वहाँ पे है। और तभी कृष्ण ने बलराम से कहा, देखो वो कौन है, वो जो व्यक्ति है इतना महाकाय व्यक्ति है, इतना इतने उसके बाहु बलवान है वज्र के समान, वो भीम के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। उसके बाजू में जो है वो अर्जुन ही है। तो बलराम जी ने देखा, हाँ वो ही है वो। और फिर दोनों प्रसन्न हो गए, जानते थे कि भगवान पांडव जीवित है पर फिर भी जी उनको देख के यहाँ प्रसन्न हो गए। और फिर तभी अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि क्या मैं इस प्रतियोगिता में सहभागी हो सकता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ। और फिर वे आगे आ गए और फिर अर्जुन ने क्या किया, वो सीधा धनुष के पास नहीं गए, वो पहले दुष्टुम्न और द्रुपद को प्रणाम किया। उन्होंने कहा क्या इस स्वयंवर में ब्राह्मणों को सहभागी होने की इजाजत है। अभी यहाँ पे देखिए फर्क कर्ण में और अर्जुन में। वास्तव में ब्राह्मण जो होते हैं वो क्षत्रियों से ऊंचे होते हैं, क्षत्रियों से ऊंचे होते हैं, पर फिर भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं। कर्ण क्या सीधा आ गया और जब उसका नहीं बोला गया तो उसने खुद ही अपमान स्वीकार कर लिया। तो अर्जुन ने क्या कि सबसे पहले इजाजत मांगी। और जब द्रुपद ने देखा तो उन्होंने देखा कि बड़ा शक्तिशाली क्षत्रिय लग रहा है, ब्राह्मण लग रहा है, और उसने कहा कि जो ब्राह्मण जो होते हैं वो तो क्षत्रियों के लिए पूजनीय होते हैं। तो ब्राह्मण जो भी कार्य के क्षत्रिय योग्य है ब्राह्मण भी जरूर योग्य है। और जब अर्जुन ऐसे चले गए आगे तो सारे ब्राह्मण लोग जो थे वहां पे, बहुत से ब्राह्मण आ गए, तो ये ऐसे बड़ा उत्सव था। तो ब्राह्मण अपने आप में बात करने लग गए, ये बालक सारे ब्राह्मणों को बदनाम कर देगा, ये शायद द्रौपदी के सौंदर्य को देख के मोहित हो गया है। और ब्राह्मण भले कैसे बड़े शस्त्र को कैठे कैसे उठा सकता है, संभव नहीं है, रोको उसको। तो कुछ और ब्राह्मण कह रहे थे, नहीं नहीं आप देखो इसके जो शक्ति है कितनी विशाल है, ये बड़ा शक्तिशाली है। और आज ये ब्राह्मणों के गुण का कि ब्राह्मणों की ख्याति को और बढ़ा देगा कि जो क्षत्रिय नहीं कर पाए वो ब्राह्मण ने कर दिखाया। तो ऐसे बात जाते चल रही थी तो फिर अर्जुन वहां पे चले गए, उन्होंने धनुष उठा लिया और सीधा जो तीर मारा तो क्या हो गया, बिल्कुल भेद गया उसके मछली के आंख में। और फिर तभी सब ब्राह्मण बड़े आनंदित हो गए और क्षत्रिय जो थे आग बबूले हो गए सब, क्योंकि उनका अपमान जैसे हो गया, सब क्षत्रिय आ गए हैं और किसी को भी नहीं कर पाए, एक ब्राह्मण ने कर लिया। फिर द्रौपदी ने आके जो माला थी वो अर्जुन को पहनाई और जब ये देखा उन्होंने तो फिर सारे क्षत्रिय बड़े क्रोधित हो गए। और दुर्योधन ने कहा कि द्रुपद ने हमको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि हम सबका अपमान करें, कि सारे क्षत्रियों को छोड़ के अपनी पुत्री को उसने एक ब्राह्मण को दे दिया है, तो आगे के स्वयंवर में अब कभी ऐसे क्षत्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सब द्रुपद को आज एक सबक सिखा देंगे। और वे सब क्या हो गए, सब उठ गए और शस्त्र उठा के द्रुपद पे आक्रमण करने आ गए। अभी द्रुपद महाराज अकेले थे, सैकड़ों राजाएं थे वहां पे, सब आ गए तो द्रुपद जो थे वे थोड़े भयभीत हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुरंत अर्जुन और भीम को कि अभी ये द्रुपद महाराज है, ये हमें हमारे रिश्तेदार बन गए, ये हमारे पिता के समान हो गए हैं, तो इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो तुरंत क्या हो गया, अर्जुन के पास वो धनुष अपने हाथ में अभी तक था, तो भीम ने देखा अभी क्या करे, उनका शस्त्र नहीं था, ब्राह्मण थे वे, तो वहां पे एक बड़ा वृक्ष था, साल का वृक्ष था, तो वो तुरंत वो चाह गए वहां पे उसको उखाड़ने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा रुको रुको, अगर तुम ये इतना बड़ा वृक्ष उखाड़ लोगे तो फिर सब लोग समझ जाएंगे भीम के अलावा कोई नहीं कर सकता ये, तो हम जो छिपके रह रहे छिपा हमारा जो पहचान सबको पता चल जाएगी, तो थोड़ा साधारण अस्त्र इस्तेमाल करो आप। तो फिर उन्होंने दूसरे एक वृक्ष को उखाड़ लिया और जो सारे क्षत्रिय आ रहे थे आक्रमण करने को उनके बीच में खड़े हो गए। तो जब इस तरह से खड़े हो गए तो फिर इन क्षत्रियों के अग्र में जो थे कर्ण अपना धनुष लेके आ गए और जो वो अर्जुन से प्रतिकार करने लग गए, और जो शाल्व थे शाल्य वो भीम से युद्ध करने लग गए, और दोनों ने इतना घमासान युद्ध किया कि दोनों ने ही सब क्षत्रियों को पीछे रोक दिया। फिर कर्ण आके युद्ध करने लग गया और कर्ण सोचा था कि ये ब्राह्मण है, क्या शक्ति होगी इसके पास, और वो तीर जोड़ा था और न केवल सारे तीरों का प्रतिकार कर दिया अर्जुन ने, उनको पता नहीं था अभी तक अर्जुन ब्राह्मण के वेश में थे, और फिर ऐसा प्रहार किया कि कर्ण घायल होने लग गया। तो कर्ण सावधान हो गया और पूरे शक्ति से आक्रमण करने लगा और अर्जुन ने पूरा प्रतिकार कर दिया उसका, पूरा जब प्रतिकार कर दिया तभी क्या हो गया, कर्ण थोड़ा मायूस हो गया और उसने अपना धनुष नीचे रख के कहने लग गया कि ऐसी धनुर्विद्या कोई साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती है, क्या तुम स्वर्ग के राजा इंद्र हो, एक ब्राह्मण के वेश में आए हो, या कोई गंधर्व हो, कौन हो तुम बताओ मुझे। तो अर्जुन हंसते हुए बोले, मैं न तो स्वर्ग का राजा हूँ न मैं कोई गंधर्व हूँ, मैं केवल अपने गुरु का शिष्य हूँ और गुरु के आशीर्वाद से मुझे जो विद्या मिली है वह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बातें छोड़ो और युद्ध करो। तो फिर जब कर्ण ने ऐसे देखा तो कर्ण ने कहा कि जो ब्राह्मणों की शक्ति होती है वो आध्यात्मिक होती है और जो क्षत्रियों की शक्ति होती है भौतिक होती है, तो इसीलिए ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करूंगा मैं। तो वास्तव में ये सिर्फ वो कहने की बात थी, वो समझ गया था कि जीतने वाला नहीं हूं मैं यहाँ पे, तो इसीलिए उसने ऐसे कह दिया। तो कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि कर्ण ये अर्जुन से अधिक निपुण था, पर ऐसे वास्तव में कर्ण और अर्जुन का अगर शक्ति का माप करना है तो कई प्रसंग ऐसे आते हैं जब अर्जुन की शक्ति कर्ण से अधिक होती है। ये जो प्रसंग मैंने बताया ये दूसरा प्रसंग था, इसके पहले कौन सा प्रसंग हुआ था, इसके पहले का प्रसंग था कि जो वो जो प्रदर्शनी हो गई खत्म, तो उसके बाद में पांडव और कौरव दोनों गए द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने कहा कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। तो तभी द्रोणाचार्य और द्रुपद की थोड़ी शत्रुत्व था, तो उन्होंने कहा कि आप द्रुपद को हरा के बंदी बना के मेरे सामने ले आओ। तो पांडव और कौरव तुरंत जाने लग गए, तो फिर अर्जुन ने कहा रुको उनको जाने दो पहले, तो फिर कौरव चले गए। तो कौरव गए, दुर्योधन दुशासन 100 कौरव थे और उनके साथ कर्ण भी था, क्योंकि कर्ण भी दुर्योधन का सहयोगी बन गया था, और उन सब ने मिलकर आक्रमण किया द्रुपद पे और क्या हो गया, द्रुपद महाराज ने उनकी शक्ति ने उनको हरा दिया और वे बड़े ही हताश होके आ गए वापस। और फिर अर्जुन और फिर पांडव गए, उनमें अर्जुन ही प्रधान थे और अर्जुन ने जाके द्रुपद महाराज को हरा दिया। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि कर्ण और 100 कौरव जो नहीं कर पाए वो केवल अर्जुन और भीम ने कर दिखाया। तो वास्तव में यह पहला प्रसंग था जहां पे अगर हमको तोल करना है तो अर्जुन की शक्ति जो थी वह कर्ण से अधिक थी, ये दूसरा प्रसंग था। तो दूसरे प्रसंग में भले ही अगर कोई कहेगा कि अर्जुन की शक्ति ज्यादा थी या कम थी पता नहीं, क्योंकि दोनों ने युद्ध वैसे ही रोक दिया, पर फिर भी कर्ण की शक्ति ज्यादा तो नहीं थी इसलिए कर्ण ने युद्ध रोक दिया। और उसके बाद में द्रुपद महाराज को पता चल गया कि वास्तव में जो ब्राह्मण के रूप में जो आए थे वो कौन थे, वो वास्तव में पांडव ही थे। बड़े प्रसन्न हो गए वो और फिर उनको बुलाया गया और फिर उनका आदर किया और उनके महल में रह रहे थे, तभी धृतराष्ट्र संदेश भेजा कि आप कृपया वापस आ जाओ। जब वापस आए तो उनको खांडव का प्रांत दे दिया उन्होंने, पर भगवान कृष्ण की कृपा से क्या हो गया, त्राताणाम भव जनार्दन, जो खांडव प्रस्थ जो था वो इंद्रप्रस्थ बन गया और उसका ऐश्वर्य जो था वह हस्तिनापुर से भी अधिक बन गया। और जब हस्तिनापुर से भी अधिक उनका ऐश्वर्य बन गया, तो तभी जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो उस समय जो उनका ऐश्वर्य और उनकी महिमा का गुणगान हुआ, तभी उससे दुर्योधन की ईर्ष्या और बहुत बढ़ गई। और फिर दुर्योधन ने कहा कि मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए, कि इससे इसका बदला लेना चाहिए। तो दुर्योधन जब वापस आया तो शकुनी ने उसको कहा कि वास्तव में तो दुर्योधन दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये चार जो थे, ये चार हमेशा षड्यंत्र साथ में करते थे। तो उसमें जो षड्यंत्र बनाते थे वो शकुनी था, और जब से भी नया षड्यंत्र बनाते थे तो दुर्योधन और दुशासन तुरंत तैयार हो जाते थे, और कर्ण कहता था नहीं नहीं हमको सीधा युद्ध करना चाहिए। तो पर बाद में जब बाकी सब बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही करो, तो कर्ण भी सहभागी बन जाते थे। तो फिर तभी उन्होंने कहा कि हम ये जुआ की प्रतियोगिता रखेंगे और उसके लिए युधिष्ठिर को बुलाएंगे। तो जब ये योजना बनाई तो कर्ण ने पहले भी क्या कहा था, जब लक्षाग्रह को जलाने की योजना हुई थी तो कहा था कि आप ऐसे क्यों करते हो, सीधा उनको युद्ध में बुला लो और युद्ध में हरा दो उनको। तो शकुन ने कहा कि तुम्हें अपने शक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास है, वास्तव में पांडव न केवल शक्तिशाली है पर वे धर्मशील भी है, और जब शक्ति और धर्म दोनों साथ में आता है तो उसका विरोध करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम सीधा उनसे युद्ध नहीं कर सकते। और दुर्योधन हमेशा शकुनी की बात मान लेते थे। तो अभी जब ऐसी योजना बनाई तब क्या हुआ, तब हम जानते हैं पूरा प्रसंग कैसे। जब इस तरह से प्रतियोगिता होने वाली थी तो पहले से ही यह प्रतियोगिता अन्याय की थी। अन्याय की थी क्यों, क्योंकि साधारणतः जुआ भी खेलते हैं तो वह समान व्यक्तियों में खेलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि उनका जो ऐश्वर्य है उसको अगर कोई समान दृष्टि से, उसके समान किसी का ऐश्वर्य है वो है दुर्योधन का। तो इसलिए जब वो आए तो दुर्योधन ने कहा कि हम जुआ खेलेंगे पर मेरी ओर से शकुनी जुआ खेलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा यह तो जुआ के नियमों के खिलाफ है, जो व्यक्ति खेल रहा है वही, जो व्यक्ति दाव पे कुछ लगा रहा है वही खेल रहा है, उसको ही खेलना चाहिए। तो शकुन ने तुरंत कहा अगर तुम डरते हो तो खेलने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, उन्होंने युधिष्ठिर का जो क्षत्रिय भाव था और जो धर्मनिष्ठता थी उसका दुरुपयोग किया। क्षत्रिय भाव क्या है, कोई चुनौती अगर कोई करता है तो उसको ना नहीं कह सकते। और युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे कि धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि आप जुआ खेलो, इसीलिए वो कभी नहीं नहीं बोल सके। तो इसीलिए उन्होंने देखा धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र शांत रहे। और फिर जब इस तरह से जुआ खेला गया और एक एक चीज करके सब कुछ वे हार गए, और फिर उसके बाद में जब द्रौपदी को दाव पे लगाया गया द्रौपदी भी हार गई, तो तभी कई बार लोग कहते कर्ण बहुत गुण संपन्न था, पर कर्ण ने ये सुझाव दिया दुर्योधन को कि द्रौपदी को बुला के लेके आओ यहाँ पे और उसको तुम्हारे दासियों के साथ रखो, क्योंकि वो अभी उसके पति जो है तुम्हारे दास बन गए हैं, वो तुम्हारे दासी बन गई है। और वास्तव में द्रौपदी के वस्त्रहरण का सुझाव था वह भी कर्ण ने ही दिया। तो वास्तव में क्या हो गया था कर्ण यहाँ पे, क्योंकि एक वो सोचा था कि दुर्योधन इतना घनिष्ठ मित्र है तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। तो यही होता है अगर हम कई जो व्यक्ति नेक नहीं है उनसे अधिक मैत्री कर लेते हैं, तो हम जिस संघ में रहते हैं उस संघ में हम दूसरों को प्रसन्न करके हम उसमें स्वीकृतता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कि हम जिस भी संघ, अगर हम भौतिकवादी लोगों के संघ में रहेंगे तो क्या होता है, तो उनको हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे हमें लगता है कि मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उन्होंने मुझे स्वीकार करना चाहिए, उन्हें मुझे अच्छा समझना चाहिए, उन्होंने मुझे आदर देना चाहिए। तो क्या होता है अगर भौतिकवादी लोगों के साथ रहेंगे, भौतिकवादी के लोगों के साथ अगर हमको आदर चाहिए तो हमें उनके जैसा भौतिकवादी बनना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे पर हमारे सारे जो मित्र हैं वो क्रिकेट के पीछे पागल हैं, तो फिर क्या होगा, अगर हमें दिखाना है, अगर हमें उन मित्रों से मित्री जोड़नी पड़ेगी तो क्या होगा, हमें भी क्रिकेट के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्रिकेट बात करनी पड़ेगी तो शायद क्रिकेट का मैच देखना पड़ेगा, क्रिकेट मैच देखना पड़ेगा फिर क्रिकेट के बारे में कुछ कॉमेंट्री करनी पड़ेगी हमारी खुद की, और फिर क्या होगा, हमारा मन उसमें चला जाएगा। अभी क्रिकेट कोई पापपूर्ण चीज नहीं है, पर वो क्या है, मन को खींच लेती है अंदर। और जब मन खींच लेता है तो फिर हमारा मन भगवान के चिंतन के लिए नहीं रहता है। पर ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं यहां पे कि जिस संघ में हम रहते हैं उस संघ में हम खुद को प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्तों के संघ में रहेंगे, अगर मान लीजिए मैं क्रिकेट का बहुत पागल था पर अगर मैं भक्तों के संघ में आ गया तो फिर मेरे को सब कृष्ण के बारे में बात करने रहे तो क्या होगा, मैं भी कृष्ण के बारे में बात करना चाहूंगा, और फिर क्या होगा, उसके लिए मैं कृष्ण के बारे में पढ़ूंगा, कृष्ण के बारे में सुनूंगा और उससे कृष्ण भावना वहित हो जाऊंगा मैं। तो इसलिए संघ का प्रभाव बहुत होता है। तो कर्ण क्या हो गया, वो जानता था कि दुर्योधन को अच्छा लगेगा ऐसे, तो इसलिए उसने सुझाव दे दिया। और फिर उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कर्ण की कि जब इस तरह से द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला था तभी जो इस तरह से अन्याय होने वाला था, द्रौपदी ने सारे भरी सभा में चुनौती दी कि यह अनुचित कार्य है। और जो दुर्योधन का एक भाई था, थोड़ा नेक था वो, तो उसका नाम था विकर्ण, तो वो विकर्ण ने भी द्रौपदी जो कहा वो सत्य कहा। वो बोला है कि क्षत्रियो में चार दुर्गुण होते हैं, वो है नशापान करना, जुआ खेलना, मैथुन में लग जाना और प्राणियों की हत्या करके, प्राणियों की हत्या करने में और मांस खाने में मत्त हो जाना। और जब क्षत्रिय इन चार चीजों के प्रभाव में आते हैं तो वो अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, और उस समय अगर वो कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य पागल के समान होता है, वो कार्य उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से जो अभी युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर को विवश होकर जुआ खेलने को लगाया गया और जुआ के प्रभाव में आकर, जुआ के नशे में आकर उसने जो भी किया है वह वास्तव में उचित नहीं है, तो इसीलिए ये सारे जुआ के मैच को आप कैंसिल कर देना चाहिए और युधिष्ठिर को सारा राज्य देकर वापस लेके जाना चाहिए। तो जब विकर्ण ने ऐसे कहा तो सारे सभा में जो लोग, सबने डालियां बजाई, पर तभी एक व्यक्ति उठा, वो कौन था, कर्ण। और कर्ण ने क्या कहा कि यहां पे मैंने बहुत से गलत, इस सभा में बहुत से गलत चीजें देखी है, पर जो सबसे गलत चीज देखी है ये विकर्ण की बात है। तो जो उसका देखो कितनी भ्रष्ट हो गई है, द्रौपदी को यहाँ पे भरी सभा में बुलाया जा रहा है, उसका वस्त्र होने वाला है, वो उसको गलत नहीं लग रहा है, जो विकर्ण ने धर्म की बात की ये सबसे गलत बात है उसको। और फिर उसने सारा उसका प्रतिसाद, उसका प्रतिकार करते हुए कुछ तो भी अपने ही तत्व बता दिए और फिर विकर्ण को चुप कर दिया। वास्तव में दुर्योधन धृतराष्ट्र से मैं राजा थे इसलिए बाकी सब भी कोई कुछ बोल नहीं पाए। और फिर हम जानते हैं कैसे द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया और भगवान उनको बचाने को आ गए और भगवान के सारे के रूप में आ गए। पर यहाँ पे हम देखते हैं प्रधान रूप से किस तरह से दुस्संग के प्रभाव से व्यक्ति खुद भी दूषित हो जाता है, बहुत दूषित हो जाता है। और कर्ण को बाद में पश्चाताप भी होता है, बाद में दस जो युद्ध होता है उसमें दसवें दिन में भीष्म पितामह गिरते हैं, तो उस रात को अगले दिन 11वें दिन का सुबह कर्ण भीष्म पितामह से मिल जाते हैं और तभी वो उनको बताते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि जो मैंने किया है मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है उसके लिए। पर क्या होता है, वो उस समय के प्रभाव के कारण, उस संघ के प्रभाव के कारण कर्ण भी दूषित हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद में पांडव वनवास में जाते हैं और जब वनवास में जाते हैं तो फिर क्या होता है, ईर्ष्या का भाव होता है कि दूसरे के दुख में मेरा सुख है। और इसलिए क्या होता है, दुर्योधन के पास अभी सारा ऐश्वर्य है पर फिर भी सुख नहीं है। वो क्या सोचता कि मुझे अभी और पांडव को और दुखी बनाना चाहिए। तो ईर्ष्या है, कभी ईर्ष्या अगर किसी व्यक्ति में कभी सुखी नहीं हो सकता है वो। तो वो क्या सोचता है कि पांडव भी काम्य वन में रह रहे हैं, हम सब वहां पर जाएंगे, और पांडव तो एक झोपड़ी में रह रहे और वनवासी के वस्त्र पहन रहे, तो मैं वहां पर जाऊंगा और मेरे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूंगा और मेरी रानी है और मेरे दासियां हैं, मेरे धन संपत्ति है, मेरे सैनिक है, सबका प्रदर्शन करूंगा और उसके द्वारा मैं पांडवों के हृदयों को जलाऊंगा, और जब उनके हृदय को जलते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा। तो फिर यह ऐसा विकृत जो भाव होता है, ईर्ष्या का भाव, यह ऐसा भाव है कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो मैं बॉम्बे में था तो एक एक कार का एडवर्टाइजमेंट था। वो क्या एडवर्टाइजमेंट था, ये कार खरीदो और अपने पड़ोसी के आंखों में ईर्ष्या देख को खुशियां लुटाओ। ये कितना घृणास्पद ये भाव है कि दूसरों को ईर्ष्यालु करके हम आनंद लेते हैं। वैसे वास्तव में हमारा आनंद भगवान की सेवा में होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता में होना चाहिए, पर भौतिक स्तर में ऐसे हो गया था दुर्योधन का। जब दुर्योधन इस तरह से भाव से चला गया तो वहां पे क्या हो गया, जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव ने देखा कि इसकी कुमति है बहुत। वास्तव में इसके पहले क्या हुआ, जब पांडव वनवास में चले गए तो सब पांडवों ने बड़ा भीषण व्रत लिया था। अर्जुन ने व्रत लिया था कि मैं कर्ण का वध करूंगा, भीम ने व्रत लिया था कि मैं सारे कौरव का वध करूंगा, मैं भीम के जांग को तोड़ूंगा, सॉरी दुर्योधन के जांग को तोड़ूंगा, दुशासन को मार डालूंगा, और फिर नकुल, सहदेव सब ने व्रत लिया था। तो तभी जो कौरव थे बड़े डर गए, थोड़े एक तरह से खुशी भी हो गए थे, डर भी गए थे। तो तभी कर्ण ने एक और षड्यंत्र सोचा, उन्हें कहा कि अभी जो पांडव है उनके पास सेना नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है, वो अपमानित भी हो गए हैं, तो वो हताश हो गए। तो अभी हम हमारी सारी सेना लेके आते हैं, उन पर आक्रमण करके उनको अभी खत्म कर देते, तो 14 साल के बाद छोड़ दो, अभी खत्म कर देंगे। तो दुर्योधन का बड़े अच्छा आइडिया, चलो। तो सारे सेना लेके वो निकल पड़े, और जब निकल पड़े तभी क्या हो गया, वो अपने राज्य से बाहर जा रहे थे तभी व्यासदेव वहां पे आ गए, और व्यासदेव ने कहा, हे धूर्त दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है सब कुछ समझता रहा हूं, और तुमने कौरवों पांडवों पे बहुत अत्याचार किया है, और अगर अभी तुम अभी उनका आक्रमण करने जाओगे तो मेरे तुम वहां पे पहुंचने के पहले मेरे शाप से तुम जल के मर जाओगे। तो जब दुर्योधन ने सुना तो वो चुपचाप चला गया अंदर, और फिर व्यासदेव गए और फिर वो जाके दुशासन धृतराष्ट्र को सदुपदेश देने का प्रयास किया उन्होंने, पर बिल्कुल सुना नहीं उन्होंने धृतराष्ट्र ने। तो देखिए कर्ण का भाव है, अगर क्षत्रिय है तो क्या समान समान युद्ध होना चाहिए, पर जब पांडवों के पास सेना नहीं है और कोई और सहयोगी नहीं है, तब सारे सेना को ले साथ में लेके जाके आक्रमण करना, ये कोई शूरवीर व्यक्ति का लक्षण नहीं है। पर बाद में ये सारी सेना लेके चले गए, तो इंद्रदेव ने देखा कि ये दुर्योधन की बड़ी कुमति है, तो उन्होंने क्या किया, अपने गंधर्व थे उनको भेज दिया। तो काम्यवन में एक नदी थी और नदी के पास में दुर्योधन अपना ऐश करना चाहते थे, तो वहां पे गंधर्व आ गया और कहा कि ये जो इलाका है गंधर्वों का है, तुम यहाँ पे आ नहीं सकते। दुर्योधन ने कहा, अरे मैं पृथ्वी का राजा हूं, तुम यहाँ पे आ नहीं सकते। तो दुर्योधन को लग रहा था कि सब कुछ मेरी ही भूमि है, तो फिर ये भाव था। तो गंधर्व ने कहा, तुम चले जाओ तुरंत, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। तो बोले, तुम चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो फिर क्या हो गया, युद्ध हो गया उसमें, और युद्ध जब हुआ तो वहां पे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण सब थे। तो जो गंधर्व थे अंगरपर्ण, तो फिर वो बड़ा शक्तिशाली योद्धा थे, और क्या कर्ण उनसे युद्ध कर रहे थे, और फिर उन्होंने कर्ण को पूरा घायल कर दिया, और कर्ण को घायल करके, कर्ण घायल होके उसके दौड़ के चले गए वहां पे। और फिर दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो गया, दुर्योधन युद्ध कर रहा था, पर धीरे धीरे बाकी गंधर्वों ने कौरव की सारी सेना को हरा दिया, और दुर्योधन अकेला था, युद्ध करते जा रहा था, पर क्या हो गया, वो गंधर्वों ने उसको हरा दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया, और फिर क्या हो गया, उसको सलाखें बांध दी, उसको जंजीर वगैरह बांध दी, हथकड़ियां बांध दी। और दुर्योधन आया था पांडवों का अपमान करने के लिए, पर क्या हो गया, उसका ही अपमान हो गया, और किसके सामने, उसकी ही दासिया, उसकी ही रानी, उन सबके सामने वही बंदी बन गया। तो क्या हो गया, दूसरों का अगर अपमान कर जाते हैं तो ऐसे ही होता है। तो फिर इसी बीच क्या हो गया, तो ये कौरव थे वो नदी के एक पार में आए थे, काम्यवन की नदी के, और पांडव दूसरे पार में यज्ञ कर रहे थे। तो फिर कुछ कौरव के सैनिक बच के चले गए दौड़ते दौड़ते, और युधिष्ठिर महाराज के पास गए और कहे कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जो है दुर्योधन और दुर्योधन दुशासन को गंधर्व ने गिरफ्तार कर लिया, कृपया उनको बचा लो। तो ये सुनते ही भीम बड़े आनंद हो गए। भीम कहने लग गए कि ऐसे लगता है अभी भी कुछ देव है जो हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो जो 14 साल के बाद हमें बड़ा संघर्ष करने के बाद करना था ये देवों ने अभी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे भीम ऐसे मत कहो, वास्तव में दुर्योधन और हम भाई हैं और उन्होंने दुर्योधन को गिरफ्तार किया है, हमारे जो रानियां हैं कुमारियां हैं उन सबको गिरफ्तार किया है, ये हमारे कुल के प्रति अपमान है। तो मैं स्वयं जाता युद्ध करने के लिए, पर मैं यहाँ पे यज्ञ करने के लिए बैठा हूँ, तो तुम और अर्जुन जाओ वहाँ पे। तो और फिर भी भीम तैयार नहीं थे। तो फिर युधिष्ठिर भी जानते थे, बुद्धिमान थे, देखो जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है वो आज तुम्हारे कृपा पे निर्भर है, तो शत्रु पे कृपा दिखाने से और बड़ा आनंद में क्या मिल सकता है। तो जब ये बोले भीम तैयार हो गए तो फिर भीम और अर्जुन चले और फिर उन्होंने युद्ध किया। और जब युद्ध हुआ तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पर अर्जुन ने वो गंधर्वों को हरा दिया। और जब हरा दिया और वो गंधर्व का वध करने वाले थे, तभी क्या हुआ, गंधर्व ने कहा, अर्जुन रुको, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, उन दोनों की पहले से मित्रता थी। और वास्तव में उन्होंने कहा कि इंद्र ने मैं तुम्हारे ही कल्याण के लिए भेजा था। दुर्योधन सब कुछ जंजीरों में बंधा हुआ था, तभी वहीं पे दुर्योधन के सामने ही वो बता रहे थे कि इंद्र जानते थे कि तुम्हारा अपमान करने के लिए आया था, तो इसीलिए उसको एक सबक सिखाने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो जब दुर्योधन ने यह सुना और उसने देखा कि पांडव ने सुना, तो इतना शर्मिंदा हो गया वो। तो फिर उसने कहा कि इसको मार डालना चाहिए अभी, ये बड़ा ही बेरहम और नीतिहीन व्यक्ति है। अर्जुन ने कहा कि नहीं है, हम सब युधिष्ठिर महाराज के सेवक हैं, तो उनको जाके पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। तो फिर ठीक है, वे लेके गए और अंगरपुरण को सब कुछ बताया उनको, ये गंधर्वों ने बताया और क्या क्या हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारा कृपालु हूँ कि तुमने दुर्योधन का वध नहीं किया, और अगर तुम चाहते हो मुझे मेरा कुछ कल्याण करना है तो कृपया मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कृपया आप दुर्योधन को छोड़ दो। तो फिर वो गंधर्व बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हारे से नेक व्यक्ति कौन हो सकता है जो जिसने तुम पे इतना अन्याय किया है तुम उसको भी छोड़ रहे हो इस तरह से, तुम सही में धर्मराज हो। और फिर युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल निष्कपट थे, दुर्योधन से कहा, हे बालक ऐसी नादानी वापस मत कर। तो जब ये सुना दुर्योधन, तो वास्तव में कोई का कोई बुरा भाव नहीं था दुर्योधन का, युधिष्ठिर महाराज का, पर वो और उसके जो अहंकार को और ठेस पड़ा और उसके जो नफरत थी और बढ़ गई। तो क्या होता है, जो व्यक्ति अनर्थों से दूषित होता है उसके प्रति कोई कल्याण भी करता है तो उसके अनर्थों के कारण क्या होता है, वो कल्याण को भी स्वीकार नहीं कर सकता है, वो उसको भी कुछ अलग पद्धति से ही ले लेता है। ऐसे कई बहुत संशयी व्यक्ति होते हैं, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति आते प्रसाद देते, ये क्यों प्रसाद दे रहे, क्या चाहिए तुमको, क्या होता है, भगवान का प्रसाद दे रहे हैं पर संशयी जो भाव होता है ना उसके कारण से परेशानी होती है। तो हमारे ये सारी कहानी बताने का उद्देश्य क्या है कि वो गंधर्वों ने कर्ण को हरा दिया और अर्जुन ने गंधर्वों को हरा दिया, मतलब अर्जुन की शक्ति कर्ण से अधिक थी। ये तीसरा प्रसंग था ऐसा। और फिर उसके बाद में जब 12 साल खत्म हो गए, 13 साल अज्ञातवास में रहना था उन्हें, तो अज्ञातवास के लिए वो विराट राज्य में चले गए। और विराट राज्य में जब चले गए तो उस समय हजारों हजारों की संख्या में दुर्योधन ने जासूस भेजे, उसकी योजना थी कैसे न कैसे तो मैं पांडवों को ढूंढ के निकालूंगा और फिर उनको वापस 12 साल वनवास में भेज दूंगा। पर पांडवों ने ऐसा दक्षता से वो अज्ञातवास में रहे किसी को पता नहीं चला। पर उस समय एक जो विराट राजा का जो सेनापति था कीचक, उसकी बुरी दृष्टि द्रौपदी पे आ गई, और जब द्रौपदी पे उसने आक्रमण करने का प्रयास किया तो भीम ने उस पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया। और ये कीचक बड़ा शक्तिशाली था, ये लंबी कहानी है, पर हमारा संदर्भ क्या है कि जब दुर्योधन को ये समाचार मिला तो सोचा, ये कीचक इतना शक्तिशाली है इसका वध कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ताकि केवल भीम कृष्ण बलराम शाल्य और मैं, सिर्फ हम उसका वध कर सकते हैं। तो अभी शाल्य तो राजा है, कृष्ण बलराम ये भी राजा है, उनको वहां पर रात को विराट राज्य में जाके वध करने क्या जरूरत है उसकी, जरूर भीम वहां पर होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर आक्रमण करने का योजना बनाई। तो वो पूरी लंबी कहानी है, पर एक ओर से जो सुशर्मा था नाम का राजा था उसने एक ओर से आक्रमण किया, और जो विराट राजा थे वो अपने सारी सेना के साथ उस ओर चले गए युद्ध करने के लिए, और दूसरी ओर से सारी कुरु सेना ने आके आक्रमण किया। और तभी जो भूमिंजय था, जो उनका राजकुमार था विराट, वो राज सिंहासन में बैठा था, और फिर वो जोश में आ गया कि मैं युद्ध करूंगा और मैं ये कौरव को हरा दूंगा। और फिर तभी अर्जुन थे, वो एक नृत्य के शिक्षक के रूप में वहां पे छिपे हुए थे बृहन्नल नाम के, तो वे उसके सारथी बन गए। और जब युद्ध में चले गए तो जब भूमिंजय ने देखा इतनी बड़ी सेना है, वो सेना सागर से कोई अंत ही नहीं है, तो पूरा डर गया। वो बृहन्नल से कहा कि चलो वापस, मैं अकेला हूँ और इतनी बड़ी सेना है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो बृहन्नल ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे कैसे दौड़ सकते हो, तुम्हारे मान का क्या होगा। तो जब देखा कि ये भूमिंजय ने कि ये बृहन्नल आ नहीं रहे, बृहन्नल मतलब अर्जुन ही, तो क्या वो इतना डर गया कि वो रथ से कूद के भागने लग गया। तो अर्जुन ने कहा हे राजकुमार, तुम्हारे आदर का क्या होगा, तुम ऐसे डर के चले गए। तो उसने बिना पीछे देखते हुए कहा अरे जिंदगी रहेगी तो आदर की बात बाद में आएगी और दौड़ते गया। तो फिर क्या हो गया, भूमिंजय बृहन्नल जो अर्जुन थे वो तुरंत उतरे, उसको पकड़ लिया वापस, उसे कहा ठीक है अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं युद्ध करूंगा, तुम कैसे युद्ध करोगे। और फिर उन्होंने अपनी पहचान बताई उनको। और फिर इधर से जब वो कौरव देख रहे थे क्या अजीब चीज है, केवल एक योद्धा आया है, फिर उनसे कोई भाग रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है। फिर बाद में अर्जुन ने तभी कैलकुलेट किया था, अभी गणना की थी कि जो अज्ञातवास का समय पूरा हो गया था, और फिर उसीलिए उन्होंने कहा कि आप मेरा धनुष लेके आओ, इस पेड़ में है, और फिर मैं युद्ध करूंगा। और जब उन्होंने अपने गांडीव बजाया तब कौरव समझ गए कि ये जो गांडीव है, जब उन्होंने अपना शंख बजाया तो क्या हो गया, जो भूमिंजय सामने सारथी के रूप में था वो नीचे गिर गया लगभग, और वो क्या है। तो अर्जुन हंसने लग गए, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्या ऐसे है, तुम्हें तो जोश आना चाहिए ये शंख की आवाज से। वो तो ठीक है, भूमिंजय कह रहे थे, पर ऐसा शंख मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। तो अर्जुन ने कहा तुम्हें और बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है आज। और फिर अपने उन्होंने गांडीव के जो ये धनुष के जो तीर होता है, तीर ऐसे खींच के छोड़ा, तो उससे बड़ा विशाल आवाज आया। और जब वो ऐसे आवाज आया तो समझ गए कौरव कि अभी ये कृष्ण ये पार्थ ही है। और द्रोणाचार्य ने कहा कि हम सबको सावधान होना चाहिए अभी, कि अभी अर्जुन आ गए हैं, अर्जुन स्वर्गलोक में जाके आए हैं, बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की। और फिर अर्जुन ने तीर छोड़े, जो तीर सीधा आके तीन तीर आए, एक तीर आके भीष्म पितामह के चरण कमलों में आके गिर गया, दूसरा तीर आके द्रोणाचार्य के चरण कमलों में गिर गया, तीसरा तीर आके कृपाचार्य के चरण कमलों में गिर गया। और फिर द्रोणाचार्य ने जब देखा तो अभी कोई शंका नहीं रही है, कि जो अर्जुन बहुत सालों के था अपने सालों के बाद अपने वरिष्ठों को देख रहे हैं, तो इसीलिए आशीर्वाद मांगने के लिए उन्हें तीर छोड़े हैं। और फिर उन्होंने हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि अर्जुन उनको वापस आ गए हैं, पर दुख भी हो रहा था कि अर्जुन के फिर आप युद्ध करना पड़ने वाला है। उन्होंने अपने हाथ ऊपर के आशीर्वाद दिया और कहा हे सैनिकों तत्पर हो जाओ, क्योंकि अर्जुन के अगले तीर आशीर्वाद नहीं मांगेंगे। तो उस समय जब युद्ध चालू हो गया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन अकेले थे और सारे कौरवों ने उन पर आक्रमण किया। तो वहां पे द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण ये सब थे, और अर्जुन ने अकेले सबको हरा डाला, सबको हरा डाला, कर्ण को भी हराया वहां पे उन्होंने। तो अर्जुन अकेले न केवल कर्ण के समान थे, सारे कौरव सेना के समान थे, कौरव महारथों के भी अधिक शक्तिशाली थे। और उसके बाद में हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में युद्ध डालने के लिए हस्तिनापुर में गए। जब वहां पे गए वो तो दुर्योधन ने उनका अपमान करने का प्रयास किया। क्या किया? उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। भगवान ने अपना विश्वरूप दिखा दिया। अब फिर दुर्योधन कहा ये कुछ जादू दिखा रहे, कुछ उसको प्रभाव नहीं हुआ। पर तभी भगवान कृष्ण अगले दिन जब लौट के जा रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मैं कर्ण तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कर्ण वहाँ पे आए अपने रथ पे, और फिर जो कृष्ण थे उस समय सात्यकी के साथ आए थे। सात्यकी और दारुक को उन्होंने दूसरे रथ पे जाने को बोला, और कर्ण और कृष्ण एक ही रथ में थे। और भगवान कृष्ण ने कर्ण को प्रस्ताव दिया वहाँ पे। अब इसके पहले कुंती महारानी भी आई थी और उन्होंने कर्ण को उनकी असली पहचान क्या है बताई थी, और उन्होंने कहा था कि तुम वास्तव में पांडवों में सबसे बड़े हो, तुम क्यों उनके खिलाफ युद्ध कर रहे हो। तो उन्होंने कुछ उनकी बात मानी नहीं। सूर्यदेव ने कर्ण को बताया था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, तुम जो केशव है ये परम पुरुष, तुम भगवान है, और पांडव है सब नीतिशील है, तुम उनके खिलाफ मत जाओ। तो उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। और फिर उसके बाद जब कृष्ण आए, तो कृष्ण ने कर्ण से कहा कि मैं जानता हूं तुम्हें कुंती ने बताया है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तो तुम बुद्धिमान हो, तुम समझो कि जो कार्य दुर्योधन ने किए हैं उसका फल है उसका विनाश और सारे कुरुवंश का विनाश, और तुम न तो उसके समान दुर्गुणी हो और न ही तुम उसके संबंधी हो, तुम सद्गुणी हो और तुम्हारा संबंध पांडवों से है, तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, सत्पक्ष में आ जाओ और तुम राजा बनोगे, युधिष्ठिर सारे पांडव अर्जुन भी तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। तो अभी कुछ महाभारत पे विश्लेषण करने वाले लोग कहते हैं कि ये क्या कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, कौरव के पक्ष में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। वास्तव में ऐसे कोई जरूरत नहीं थी भगवान कृष्ण को करने की, क्योंकि अर्जुन की शक्ति कर्ण से और बहुत अधिक थी। ये कई बार हम देखा है, तीन बार अभी तक प्रसंग देखे हमने, ऐसे चार बार वास्तव में। पर यहाँ पे भगवान क्या सोच रहे थे कि ये दुर्योधन तो सुनने वाला नहीं है, दुर्योधन ने को सुनाने का प्रयास किया भगवान ने, दुर्योधन सुन नहीं रहा है, तो दुर्योधन का पूरा जो विश्वास है वो कर्ण से आ रहा है। तो अगर कर्ण अगर उनसे दुर्योधन के पक्ष युद्ध नहीं करेगा तो दुर्योधन का हौसला भी चला जाएगा, दुर्योधन का अहंकार चला जाएगा, और युद्ध टाल सकते हैं, और जो लोगों का वध होने वाला है वो वध टाला जा सकता है। तो इसीलिए भगवान सबके कल्याण के लिए ऐसा सोच रहे थे। तो तभी कर्ण ने कहा ये कर्ण ने जितने भी गलतियां की उनमें सबसे बड़ी गलती ये थी। तो कर्ण ने क्या कहा कि मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो सत्य है, मुझे कल रात को सपना आया था, और सपने में मैं देखा कि दुर्योधन एक काले वस्त्र पहना है, उसके बाल कटाए गए हैं, और वो एक गधों के रथ नहीं, व्हाट इज द कार्ट, गधों की गाड़ी पे बैठकर वो नीचे के लोगों की ओर जा रहा है, और युधिष्ठिर जो है वो सफेद वस्त्र पहना हुआ है, बहुत सुशोभित है, अलंकृत है, और बहुत ही सुंदर रथ पे बैठकर ऊपर की ओर जा रहा है। मैं इसे समझ सकता हूं कि दुर्योधन का वध होने वाला है और उसके बाद मेरा भी वध होने वाला है। पर उसने कहा कि इतने सालों तक दुर्योधन ने मुझ पे इतनी कृपा की है, मुझे अंग प्रदेश का राज्य दिया है, तो मैं कैसे उसका अभी त्याग कर सकता हूँ। तो वास्तव में यहाँ पे उसकी गलत भाव क्या है कि ये अंग प्रदेश का भाव दिया उसको किसने, दुर्योधन ने दिया, पर दुर्योधन के पास आया कैसे था, दुर्योधन ने पांडवों से हड़प के लिया था। अब भले ही पांडवों का नहीं है कोई कहेगा, तो फिर सब कुछ भूमि जो है भगवान की है। तो इसीलिए जब जीवात्मा है भगवान कह रहे हैं उसको तुम मेरे साथ आ जाओ, कहते नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो है कर्ण यहाँ पे जो जीवात्मा है स्वयोजना से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है, और उसके कारण वो मोहित हो जाता है। जब भगवान कृष्ण ने सुना तो उन्हें कर्ण का आलिंगन किया और कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी हमारी मुलाकात रणभूमि में होगी। तो रणभूमि में अनेक प्रसंग है महत्वपूर्ण, पर हम उन सब प्रसंगों की चर्चा नहीं करेंगे। अकर्ण दसवें दिन में प्रवेश जब भीष्म पितामह गए थे तब प्रवेश करते हैं और द्रोणाचार्य के अध्यक्षता में युद्ध करते हैं, और फिर 15वें दिन में जब द्रोणाचार्य गिरते हैं तो फिर 16वें 17 दिन के लिए कर्ण जो है वो सेनापति बनते हैं। जब कर्ण सेनापति बनता है तब पहले दिन अपनी बहुत शक्ति दिखाता है वो, और दूसरे दिन अर्जुन और कर्ण में भीषण युद्ध होता है और काफ़ी समय तक युद्ध चलता है और दोनों घायल हो जाते हैं, पर कोई भी एक दूसरे पर प्रभावशाली नहीं हो रहा है। पर बाद में अंत में जब युद्ध हो रहा होता है तो जो कर्ण का रथ होता है जमीन में जाने लगता है, तो तब कर्ण कहता है कि जो रथ है कि वो अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, कायरों जैसे विचार तुम मत रखो अपने मन में, जब तक मैं रथ में तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं हूँ तुम कायरों के समान मुझे आक्रमण मत करो, रुको थोड़े समय के लिए। तो जब अर्जुन सुनते हैं तुरंत अपना रथ रणधनुष नीचे रख लेते हैं, तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ण, तो कर्ण कहते हैं कि अर्जुन नैतिकता के नियम को याद रख के युद्ध करो। तो फिर तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कर्ण को, ये बड़े भाग्य की बात है कर्ण कि आज तुम्हें नैतिकता के नियम याद आ रहे हैं, कि जब पांडवों को जलाने की योजना बनाई तब नैतिकता के नियम तुम्हें याद नहीं आए, जब युधिष्ठिर महाराज को जुए में हराया गया बेईमानी से तभी नैतिकता की याद तुम्हें नहीं आई, जब 6 महारथों ने मिलके अकेले अश्वत्थामा का वध करने का प्रयास किया और उसको मार डाला बड़ी बेरहमी से तभी तुम्हें नैतिकता की याद नहीं आई, जब तुम्हें द्रौपदी के वस्त्रहरण करने का सुझाव दिया तब तुम्हें नैतिकता की याद नहीं आई, जब काम्यवन में पांडवों का अपमान करने की योजना बनाई तब तुम्हें नैतिकता की याद नहीं आई, अगर उन सब समय में अगर तुमने नैतिकता दिखाई थी तो वही नैतिकता आज अर्जुन तुम्हें दिखाएंगे। और फिर भगवान ने अर्जुन का तीर छोड़ो तुम, और फिर जो अर्जुन का तीर था वो कर्ण के सिर को भेद के उसका वध कर दिया। तो वास्तव में जब कर्ण का वध हो गया तो पांडव सब बड़े प्रसन्न हो गए और जो कौरव पूरे हतप्रभ हो गए, वो पूरे हताश हो गए हर तरह से। पर जो कर्ण जब वध होने के बाद लगभग अभी युद्ध खत्म हो गया, अगले दिन शाल्य राजा बने, शाल्य सेनापति बने और शाल्य को भी वध करके फिर दुर्योधन का अंत में वध हो गया। पर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण कई बार ऐसी योजना बनाते हैं इससे कि वो अपने भक्तों को बचाते हैं, और भक्त क्या दिखाते हैं कि सही बार कितना भी अन्याय हो अपने जीवन में हमें सही चुनाव करना चाहिए। हमारे साथ गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत करूँगा, तो मैं जहाँ तक हो सके सही करना चाहिए। तो कर्ण की गलती क्या थी, उसके साथ भले कुछ गलत हुआ हो पर उसने भगवान के प्रस्ताव को ठुकराया। अगर वो इतना दानवीर है तो भगवान उसे कुछ निवेदन करने आ रहे हैं तो भगवान को उन्हें ठुकरा दिया, तो कहाँ है उसकी दानवीरता। वास्तव में भगवान को दान नहीं देना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान अगर हमसे कुछ मांगने आते हैं तो हमारे लिए कितने बड़े आदर की बात है, तो वो अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो ज़रूर हमारे विनाश का कारण बनता है। तो इसके विपरीत हम देखते हैं अर्जुन हर समय कितना भी अन्याय होता है कभी भगवान को दोष नहीं देते हैं और कभी अन्याय को कारण लेके खुद नैतिकता को त्यागते नहीं है। और इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा, यहाँ पे भगवान है और भगवान के सेवक है वहाँ पे परम विजय है। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, इताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है? यस
जहाँ तक जो आप भक्त हैं वो आप कह रहे थे कि उनको सही मार्ग पे चलना चाहिए चाहे जितने भी उनको करना है, उसकी क्या उसकी मतलब कई बार मतलब इसकी कोई सीमा, क्योंकि हर वक्त की सर्वशीलता भी कोई है have their own capacity. So how do we understand, like, where do we...
Correct. सही मार्ग पर चलना और कहाँ तक हम सहन कर सकते हैं अन्याय को या कुछ बद परिस्थिति को, तो वास्तव में सही मार्ग पर चलना इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रकार के अन्याय को स्वीकार कर लेना। वास्तव में हर समय हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करने का प्रयास करना है। तो जो युद्ध होता है उसके पहले भगवान कृष्ण शांतिदूत के रूप में आते हैं पांडव के पास, उसके साथ साथ जो धृतराष्ट्र है वो भी शांतिदूत के रूप में भेजते हैं संजय को, और वो क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा ही षड्यंत्रपूर्ण संदेश देते हैं। क्या कहते हो अर्जुन, हे युधिष्ठिर, तुम तो बड़े धर्मशील हो और तुम जानते हो कि भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है। अगर सब कुछ अस्थाई है तो जो भी हम ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं वो भी अस्थाई है। अगर कोई राजा भी बनता है, राजा बनने के बाद उसको वानप्रस्थ स्वीकार करना होता है, तो तुमने अभी वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया है। तुमने जो वानप्रस्थ स्वीकार किया है, वानप्रस्थ तुम वानप्रस्थ में ही रहो, तुम भी युद्ध कर रहे हो। तभी भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि वास्तव में हम क्षत्रिय है, हमारा कर्तव्य करने के लिए हमें कुछ सुविधा चाहिए और वो सुविधा प्राप्त करना ही हमारा अधिकार है। तो इसीलिए हम जो देख रहे हैं कि हमें हमेशा भगवान की सेवा करते रहनी है, पर वो सेवा करते समय क्या परिस्थिति में हम सेवा कर सकते हैं और उस परिस्थिति के लिए संघर्ष करना यह अनुचित नहीं है। पांडव भी युद्ध क्यों कर रहे हैं? अगर सहनशीलता ही भक्ति का सबसे बड़ा गुण है तो पांडव को युद्ध करने की जरूरत नहीं है। युद्ध क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी सेवा प्रभावशाली होनी है तो उसके लिए अनुकूल परिस्थिति भी जरूरी है, और जब अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना ये भी भगवान के प्रति हमारी सेवा ही है। तो अभी वो किस प्रकार से परिस्थिति निर्माण करेंगे वो देश काल पात्र के अनुसार निर्भर है। पर तो हमारा भाव क्या है कि जैसे कुंती महारानी कहते हैं कि जैसे नदी हमेशा सागर के समान तोड़ और जाती है, वैसे मेरी चेतना आपके पास जाने दो। मतलब हम हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर कुछ कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है तो फिर या तो हमें परिस्थिति को बदलना पड़ता है कभी कभी, या फिर खुद को बदलना पड़ता है। पर ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश, किसी न किसी प्रकार से हमारी भगवान की सेवा जारी रखनी है, भगवान का स्मरण जारी रखना है, और वो किस प्रकार से करना है वह देश काल पात्र पर निर्भर है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन, सवाल है यहाँ पे कि जो भगवान को मालाएं पहनाई जाती है इस विषय, डू वी हैव टाइम, वन क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल यह है कि भगवान को मालाएं जो पहनानी है वो सुगंधित होने चाहिए, फूलों से होने चाहिए, पर कई बार सुगंधित फूल नहीं होते हैं, तो फिर ऐसी मालाएं भगवान को क्यों पहनाई जाती है? तो वास्तव में भगवान को जो सबसे प्रसन्नता करती है वो फूलों का सुगंध नहीं है, हमारे भक्ति का सुगंध है। तो ऐसे नहीं है इसका मतलब कि हम सिर्फ भक्ति का सुगंध रखेंगे और फूलों का सुगंध नहीं रखेंगे, वह भाव नहीं है यहाँ पे। पर प्रधान भाव क्या है? प्रधान भाव है कि जिस भी परिस्थिति में है हम, उसमें हमें भगवान की सेवा करनी है। तो जान बूझ के हम सुगंध रहित फूल नहीं लाते कि भगवान तुम्हारे लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ, तो ऐसा भाव नहीं है। पर देश काल पात्र के अनुसार भगवान हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो तभी वहाँ पे जब भक्तों को माला बनानी थी, जब करने के लिए माला बनानी थी, तो वहाँ पे कोई तुलसी नहीं था, नीम भी नहीं था, तो तभी भक्तों ने किससे माला बनाई थी? तो उन्होंने क्या किया, तभी वहाँ पे जो साधारण लकड़ी थी उससे मालाएं बनाई थी और उस पर जप कर रहे थे। तो ये शास्त्रों के अनुसार आदर्श नहीं होगा, पर आदर्श क्या है कि जो बाह्य चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है, पर उससे महत्वपूर्ण है कि अंतरंग भाव। तो अंतरंग भाव साथ में रखते हुए बाह्य रूप से हम जितनी अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो महाभारत में प्रसंग देखते हैं किस तरह से दुर्योधन ने बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे भगवान कृष्ण के लिए, और विदुर के पास कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं थे, पर भगवान क्या बोले, दुर्योधन ने बोला मैं तुम्हारी बड़ी मेजबानी बनाई, मैं आता हूँ आपके, आप आओ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्यों, मैं तुम्हें आमंत्रण दे रहा हूँ। भगवान ने कहा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में दो कारण से खाता है, एक तो है वो भूखा हो, दूसरा है कि वो दो व्यक्तियों में प्रेम हो। भगवान ने कहा मैं भूखा नहीं हूँ और हम दोनों में कोई प्रेम नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं आऊँगा। और फिर वो विदुर के घर में गए और विदुर के घर में क्या किया, वहाँ पे रूखी शाख थी, जो जो केला था तो केला क्या जो खिला रही थी विदुर की पत्नी विदुरानी, तो क्या हुआ वो इतने भाव विभोर हो गई थी, वो केला निकाल रही थी और केला को फेंक रही थी और केले के पत्ते भगवान को खिला रही थी और भगवान ने खाया, बहुत से खाए और फिर भगवान चले गए। और फिर बाद में विदुर आए और कहा भगवान आए थे हमारे घर में, हाँ आए थे, तुमने कुछ खिलाया उनको, कुछ उनका स्वागत किया अच्छी तरह से, हाँ मैंने बहुत से केल खिलाया उनको, देखो यहाँ पे सब उसके छिलके और देखा सब वहाँ पे केल पड़े थे तो फिर जब उन्होंने देखा तो क्या उन्होंने देखा, दोनों वो केलों को देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, दोनों के आंखों से आंसू आ रहे थे। तो वास्तव में भावग्रह है जनार्दन, तो अगर हृदय में भाव है तो बाह्य रूप से भी हम प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए जितना अच्छा परिस्थिति हो सकते उतना, पर अगर परिस्थिति संभव नहीं है किसी का कारण तो फिर हम अगर सहभागी हो सकते हैं वो परिस्थिति को परिवर्तित करने में, अगर हम देखते हैं सुगंधित फूल नहीं है तो फिर हम मदद कर सकते हैं, कहीं किसी अच्छी जगह से सुगंधित फूल ला सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, इट इज बेटर टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम टीका करना बड़ा आसान है पर अगर हम कहीं समस्या देखते हैं तो हम वो समस्या को सुलझाने में सहयोग करना चाहिए जहाँ जहाँ तक हम कर सकते हैं उतना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। तो आज हमने देखा कि कर्ण के जीवन से हमें इतने महत्वपूर्ण संदेश सीखने